बनके फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे, बनके फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे, सूक्ष्म वतन से करके इशारा, सूक्ष्म वतन से करके इशारा, बड़े प्यार से बुला रहे, बनके फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे। पालना क्या खूब थी, अव्यक्त में वही पा रहे, साकार पालना क्या खूब थी, अव्यक्त में वही पा रहे, अव्यक्त में अव्यक्त मिलन साकार सा हम मना रहे, आज भी हर पल बाबा तेरे वरदानों को हम पा रहे, बनके फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे। देह से न्यारा विदेही हो अब कर्मातीत बनना है, देह से न्यारा विदेही हो अब कर्मातीत बनना है, व्यर्थ संकल्पों से हो परे अब हमको घर जाना है, कदम कदम पर बाबा से श्रीमत जो हम पा रहे, बनके फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे, बनके फरिश्ता प्यारे बाबा हमको फरिश्ता बना रहे, हमको फरिश्ता बना रहे, हमको फरिश्ता बना रहे।
ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी के इस तीसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। कल हमने देखा कि बाबा के लौकिक परिवार वाले कौन कौन हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश की। आज हम बाबा के बिजनेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उनके संबंधित जो भी लोग हैं उनको भी जानने की कोशिश करते हैं। बाबा का बिजनेस मुख्यतः तीन जगह पे था। मेन जो बिजनेस कलकत्ता में था और बाबा का लौकिक घर सिंध हैदराबाद में था और बॉम्बे में भी बाबा का बिजनेस था। तो इसके कारण से तीनों जगह पर बाबा का आना जाना होता था। लेकिन जब छोटे थे तब हैदराबाद सिंध में थे। जब बाबा 15 साल के थे तब उनके लौकिक पिता बाबा को कलकत्ता भेजा एक नौकरी करने के लिए, और एक हीरे जवाहरातों के का कंपनी था जिसका नाम ताराचंद परशुराम कंपनी था। तो उस कंपनी में 15 रुपए पर मंथ सैलरी पर बाबा गए वहाँ 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और 3 साल में बहुत सारे उन्होंने कुछ सीखा, बिजनेस ट्रिक्स सीखा, बहुत कुछ आगे बढ़े। और 3 साल के बाद जब वापस सिंध आए तो बाबा की शादी हुई उस समय जसोदा माता जी के साथ। बाबा उस समय 18 साल के थे और जसोदा माता 9 साल के थे। फिर दोबारा बाबा कलकत्ता गए बिजनेस के लिए, और उस टाइम पे उनका पगार थोड़ा बढ़ गया था क्योंकि उनके अनुभव और उनके स्किल्स के कारण से 26 रुपीज पर मंथ के रूप रीति से वो नौकरी करने लगे थे उसी कंपनी में। फिर बाद में 3 साल के बाद वापस आए, फिर गए, फिर पार्टनरशिप के साथ किसी के साथ बिजनेस किया, फिर आए, फिर वो पार्टनरशिप भी डिसॉल्व करके फिर अपना बिजनेस बाबा ने कलकत्ता में शुरू की। कलकत्ता में बाबा के कुछ परिचित लोग थे जो संबंधी और दोस्त थे। उनमें से एक खास विश्वसनीय व्यक्ति थे, उनका नाम सेवक राम था, जिनके साथ बाबा ने पार्टनरशिप में लकीराज सेवक राम एंड सन्स नाम के व्यापार शुरू किया। कलकत्ता में सबसे नामी ग्रामी स्थान और प्रसिद्ध बिजनेस सेंटर उस समय न्यू मार्केट में था, जिसे चार्ल्स हॉग मार्केट के नाम से जाना जाता है। उस मार्केट के ठीक सामने एक 7 मंजिल का एक इमारत थी। उसकी पहली मंजिल पर बाबा ने दुकान, यानी उस समय जो हम गद्दी कहते हैं, उसे हीरे जवाहरातों के बिजनेस का स्थान बना दिया गया था फर्स्ट फ्लोर पे। दूसरे मंजिल पर बाबा का परिवार पूरा रहता था, और तीसरी मंजिल में बाबा का जो पार्टनर है सेवक राम जी, उनका परिवार रहती थी। उस मार्केट में आज भी उस मकान बहुत ऊंचा है तथा ठीक उसके पास ग्लोबल सिनेमा हॉल है, और ग्लोबल सिनेमा हॉल में हॉल से एक मकान छोड़कर उसी फुटपाथ पर राम लक्ष्मण एंड कंपनी एक दुकान थी जो आज भी उसी नाम से हीरे व सोने का व्यापार करती है। वो दुकान आनंद किशोर दादा का था जो बाबा के बहुत नजदीक के संबंधी थे। उनका लौकिक नाम लक्ष्मण था, इसीलिए दुकान का नाम राम लक्ष्मण एंड कंपनी रखा गया था, क्योंकि आनंद किशोर दादा के पार्टनर का नाम राम था, और दादा ब्रह्मा बाबा का पूरा अनुकरण किया। जैसे बाबा सारा बिजनेस समेट कर कलकत्ता से हैदराबाद सिंध आए, उन्होंने भी दादा भी ऐसे ही किया। बाबा ने अपना बिजनेस अपना पार्टनर सेवक राम को दिया, और दादा आनंद किशोर ने अपना पार्टनर राम को सारा बिजनेस दिया, और अपने हिस्से का धन लेकर बाबा के पास चले आए। यज्ञ में समर्पित भाइयों में उस समय सबसे ज्यादा पढ़ाई सिर्फ आनंद किशोर दादा ने की थी। अंग्रेजी में ज्ञान की सभी बातों को लिखना, अनुवाद करना, मुरली अंग्रेजी में लिखना, अंग्रेजी में देश विदेश में पत्र व्यवहार करना, और विदेशी जब आए उनको पालना देना, सब दादा आनंद किशोर का ही काम था। इसके अलावा बाबा के ऑफिस का कार्य कचेरी से लेकर मधुबन माउंट आबू में अपने अंतिम समय तक ऑफिस संभाला। और उनके साथ साथ एक और महान आत्मा थी, वो है भाऊ विश्वकिशोर। मुख्य न्यू मार्केट के ठीक बीचों बीच हीरे जवाहरातों के शोरूम जैसे एक बहुत बड़ी दुकान थी, जिसमें सभी प्रकार के गहने थे। वो जवाहरात का जैसे एक म्यूजियम था। बहुत विदेशी भी वहां आकर सैंपल दिखाकर ऑर्डर देकर जाते थे। लेकिन ये दुकान भी रिटेल माल बेचने का बाबा का ही जैसे शोरूम था। बाबा ने ही विश्वकिशोर भाव को ये दुकान खोल करके दिया था। विश्वकिशोर दादा, जिसका लौकिक नाम भैरव दादा था, जिसे सभी यज्ञ में भाव के नाम से जानते हैं, ये उनकी दुकान थी। उन्हें तो आदि से अंत तक बाबा का राइट हैंड समझकर सभी यज्ञ निवासी सम्मान देते थे। अतः ऐसे मीठे भाव के पास जो भी ग्राहक होलसेल में माल लेने के लिए आते थे, वे उन्हें बाबा के पास पहली मंजिल वाली गद्दी पर लेके जाते थे। कोई भी नया डिजाइन, फैशन या मन पसंद की ज्वेलरी चाहिए तो उसे बाबा ही बनवा कर देते थे। भाव बाबा के लौकिक भाई का बड़ा बेटा था। बाबा के तीन भाई थे। पहले जो भाई है उनका नाम तुलसीदास जी, और दूसरा भाई का नाम है नवल राय जी, और तीसरे में बाबा थे। तो जो पहले भाई का बेटा तुलसीदास जी जो थे, उनका बेटा भाऊ थे। तो अतः बाबा पर शुरू से प्रेम और विश्वास होने के कारण वो जैसे कि परिवार के सदस्य ही थे। शुरू से जो बाबा ने कहा वो हाँ जी, जी हाँ कहकर सब कुछ करते थे। इनका भी श्रेष्ठ चरित्र और दिव्य जीवन कहानी है, तथा वे भी बाबा को अनुकरण करके सारा बिजनेस समेट कर कराची चले आए थे। अंत तक बाबा के अंग संग रहकर बाबा के हर आदेश का पालन किया। ज्ञान की हर योजना को कैसे विधि पूर्वक किया जाए, उसे बाबा के आदेश व श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट करते रहे। उन्हें सभी कार्यों में सफलता जैसे कि वरदान के रूप में मिली हुई थी। सन 1967 में वे अपना पार्थिव शरीर छोड़ एडवांस पार्टी में चले गए। और साथ साथ बाबा के परिवार में एक और विशेष आत्मा थी, जो भाव के युगल थी, जिसे सभी संतरी दादी के नाम से जानते हैं। वैसे तो ये बाबा के घर में बहू के रूप में आए थे, लेकिन उनका पूरा ही पार्ट बेटी के समान था। वैसे निर्मल शांता दादी को बाबा बहुत प्यार से पालू कहते थे, क्योंकि सभी को पता है कि वहां उस समय एक आम आता था जिसका नाम पाली था। तो बाबा सिंध भाषा में कहते थे पाली आम मीठो, यानी पाली आम मीठा है, ऐसे ही तुम पालू बच्ची हो। उसी रीति से बाबा को दूसरा फल जो बहुत पसंद था वो था संतरा। उसका रंग रूप बहुत सुंदर होता है। संतरी दादी का चेहरा, मीठी प्यारी बातें व सेवा के कारण बाबा उनको हमेशा संतरु बेटा कहकर के बुलाते थे। बहू के रूप में तो उन्हें बाबा के सामने कम बोलना व एकदम नहीं बोलना पड़ता था, क्योंकि उन जमाने में बहू ससुर के सामने ज्यादा बोलते नहीं थे, वो सिर झुकाकर चलते थे। उस समय के समाज के अनुसार लौकिक ड्रेस में साड़ी व सलवार कुर्ता और चुन्नी आदि पहनना होता था, सिर ढककर चलना होता था, यह घर का रिवाज था। लेकिन बाबा ने एक दिन शुरुआत में जब एक दो बार सिर पर चुन्नी ढककर तथा गर्दन झुकाकर चल रहे थे व शर्म करना देखा, तो झट से सभी के सामने चुन्नी को हाथ से उतार कर यशोदा मैया को दे दिया और कहा कि आज से कभी भी ये बहू के रूप में इस प्रकार का कोई भी चाल चलन नहीं अपनाएगी और ना ही ऐसे कपड़े पहनेगी। जैसे पालू पहनती है रहती है ऐसे ही पहने चले और बोले। तब से वो बाबा की बहुत प्यारी संतरु बच्ची बन गए। बाबा ने खास संतरे के कारण ही दादी का नाम संतरु रखा था। जब सीजन में रोज टोकरा भर करके संतरे आते थे तो उनका रस निकालने की सेवा संतरी दादी ही करते थे। घर में तो सभी को मिलता ही था। साथ साथ गद्दी में जो भी ग्राहक व काम करने वाले होते थे उनका भी उस समय चांदी के ट्रे में सजाकर ग्लास भरकर सभी को संतरे का जूस पिलाया जाता था और वो संतरी दादी ही करते थे। खाना बनाना पकाना ये तो बाबा करने ही नहीं देते थे। घर में बहुत प्रकार के सर्वेंट्स थे, मेड्स थे, कुछ अंग्रेजी थे, कुछ मारवाड़ी थे, कुछ इंडियन थे, तो अलग अलग प्रकार के जो सर्वेंट्स थे उनके अलग अलग ड्यूटीज भी होती थी। घर की सफाई, खाना बनाना, नहलाना, कपड़े की धुलाई आदि सब काम नौकर ही करते थे। मीठी संतरी दादी भी प्यार से सभी की सेवा करते हुए भाऊ के साथ साथ बाबा के घर में ही रहते थे। भाऊ को एक अलग कमरा गद्दी के पास बाबा ने दिया हुआ था लेकिन संतरी दादी तो बाबा के घर में ही ज्यादातर रहते थे। उन्होंने अंत तक बाबा के यज्ञ में रहकर कई प्रकार की सेवाएं की। हैदराबाद सिंध से मधुबन तक उनका तो संदेशी का भी पाठ यज्ञ में चला। साकार बाबा के शरीर छोड़ने के बाद अव्यक्त बाबदादा की पहली पदरामणी संतरी दादी के तन में ही हुई थी और अव्यक्त पाठ की पहली मुरली भी 21 जनवरी 1969 को संतरी दादी के तन द्वारा ही चलाई थी। इतनी भाग्यशाली पवित्र निर्मल आत्मा दादी संतरी थी जिसके तन में बाबा की प्रवेशता हुई थी। इसके बाद मीठी दादी ने मधुबन में स्टॉक संभालने की सेवा की। बाबा ने संतरी दादी को 1970 में कलकत्ता भेजा। फिर 1970 से लेकर 1990 तक दादी कलकत्ता में निर्मल शांता दादी के साथ सेवा करते रहे और 11 नवंबर 1919 को जब निर्मल शांता दादी मधुबन के लिए आ रहे थे तो संतरी दादी ने निर्मल शांता दादी को कहा कि दादी मैं भी बाबा से मिलना चाहती हूँ। और निर्मल शांता दादी ने कहा कि भला अभी अचानक ये संकल्प कैसे आया। फिर संतरी दादी ने कहा नहीं बाबा से मिलने का बहुत दिल हो रहा है, मैं वापस जल्दी आ जाऊंगी, 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। ड्रामा की भावी मधुबन दादी आए लेकिन दिसंबर 13, 1919 को सदगुरुवार अव्यक्त बाबदादा के आने का दिन था। मीठी संतरु दादी ठीक अमृत वेला 3 से 4 बजे के बीच में वतनवासी बाबा के पास सोए सोए ही पहुंच गई। फिर शाम को बाबा की पदरामणी हुई तो बाबा का संदेश सारा यही था कि संतरी बच्ची की दिल थी कि बाबा की गोद में शरीर छोड़ो। बच्ची का सारा कर्म बंधन चुक्त हो गया था। बच्ची ने संकल्प किया बाबा मैं आऊं, बाबा ने बुला लिया। तो आप सभी भी ऐसे ही शरीर छोड़ना चाहते हैं ना, बाबा ने पूछा। ऐसे बाबा का संदेश सुनकर सभी को लगता है कि ऐसी महान आत्मा कितनी यज्ञ की वफादार, फरमान बरदार और विशेष आत्मा थी जिसे आज भी ये याद करते स्नेह से दिल गदगद हो जाता है। और बाबा सभी बच्चियों को देविया कहते थे। ज्वेलर बाबा को बच्चों को गहने पहनाने का, अच्छे अच्छे रंगीन कपड़े पहनाने का बहुत शौक था। बाबा का स्वभाव बहुत विचित्र और दुनिया वालों से अलग था, निराली थी। उस समय कलकत्ते में बहुत विदेशी आते थे क्योंकि अंग्रेजों का वो राजधानी था कलकत्ता। बाबा बच्चियों को शक्तियों के रूप में देखते थे, कहते थे ये बच्चियां देविया है। बाबा जो भी नई ज्वेलरी बनाते थे उसको पहले बच्चियों को पहनाते थे। जब ग्राहक गद्दी पर आते थे तो उनको बाबा सैंपल दिखाते थे, कैटलॉग दिखाते थे। सब देखने के बाद वे लोग कहते थे, लकीराज बाबू आपकी बेटी ने जो पहनी है ना वैसे ही डिटो, वैसे ही ज्वेलरी हमें बना के देना। क्योंकि उस समय बच्चियां वहां दुकान के इस आसपास घूमते थे तो उनको देख करके, उनकी ज्वेलरी को देख करके वो ग्राहक वही ज्वेलरी मांगते थे। तो एक बार कलकत्ते में रानी एलिजाबेथ आए थे। उस समय बाबा ने हीरों का एक बकल बनवाया था जिसका सूर्यों की किरणों जैसा डिजाइन था, पहनने पर ट्यून बजती थी। थी हीरों की चीज, हीरे से बनाया गया था लेकिन उसमें ट्यून बजती थी। उसको पहना कर बाबा निर्मल शांता दादी को पहना कर बाबा रानी के पास ले गए। बाबा ने तो रानी को बहुत सारी ज्वेलरी और कैटलॉग्स वो सब कुछ दिखाया, वो उसमें से भी कुछ ले रहे थे और दादी तरफ भी देख रहे थे, रानी जो है दादी की तरफ भी देख रहे थे। उसने दादी को उठाकर, क्योंकि दादी उस समय बहुत छोटी सी बच्ची थी, उनको उठाकर अपनी गोदी में बिठाया और जब बिठाया तो वो बकल ट्यून बजने लगा। ट्यून बकल से, बकल माना यहाँ जो लगाते थे, जो रॉयल लोग यहाँ जो ब्रोच ब्रोच कहते हैं, जो कहते हैं, तो वो है बकल माना। तो उसमें ट्यून बजने लगा और उन्होंने कहा, रानी ने कहा कि लकीराज बाबू आपकी बेबी के पास ये जो ज्वेलरी है ना वैसे ही मुझे भी एक चाहिए। उसको तो मांग सकते थे लेकिन फिर उस समय वो दे नहीं सकते थे ना, निकाल करके, बच्ची से निकाल करके वो दे नहीं सकते थे। तो बाबा ने कहा ठीक है, ऐसे ही बनवा करके आपको दे देंगे। तो बाबा वंडरफुल तो थे ही, रात को सोते, जब बच्चे सोते थे सारी ज्वेलरी निकाल करके उतार करके सोते थे, सवेरे उठकर घूमने जब जाते थे तो फिर दादी ने बाबा को कहा, बाबा मुझे तो वही वाला बक्कल वाला, वो बाजे वाला बक्कल चाहिए। बाबा ने बहुत प्यार से कहा कि बच्चे तुम बासी रोटी खाओगी। तो दादी ने कहा, बाबा तो चतुर सुजान थे, बहुत युक्तिबाज थे, तो बाबा ने पूछा कि बच्ची आप बासी रोटी खाओगी? तो दादी ने कहा नहीं, मैं तो गरम गरम खाऊंगी, ताजी रोटी खाऊंगी, बासी रोटी क्यों खाऊं। फिर बाबा ने कहा अच्छा, फिर वो पुराना बासी बकल कैसे पहनोगे? तुमको फर्स्ट क्लास नया बकल बनवा के दूंगा, वो तो पुराना मॉडल हो गया है, नया मॉडल बना करके तुमको दूंगा। ये सुनकर दादी बहुत खुश हो गए कि ये नया मॉडल मुझे पहनने को मिलेगा, ज्वेलरी मिलेगी। इस प्रकार बाबा बच्चों को सदा खुश रखते थे, कभी चेहरा छोटा होने नहीं देते थे। जो कल पहना था उसी को आज बिक्री कर देते थे। उसी प्रकार वो बाजे वाला बकल रानी के पास चला गया। बाबा बच्चों को रोज नई नई ज्वेलरी पहनाते थे। इसको देखकर बाबा का पार्टनर बाबा से कहा कि तुम रोज नई नई चीज बच्चों को पहनाते हो और उसी को बेचते हो, ऐसे क्यों करते हो? तब बाबा ने कहा कि देखो सेवक राम, ये बच्चियां शक्तियां हैं। एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम होती है। इनको पहनाकर बेचते हैं तो अच्छा दाम मिलता है। सेवक राम जी पार्टनर तो थे जरूर लेकिन बिजनेस में उतना ध्यान नहीं देते थे। बिजनेस सारा बाबा के द्वारा ही चलता था, क्योंकि रॉयल फैमिली से मिलना, उनके साथ उठना बैठना सब बाबा का ही था, तो बाबा का ही प्रभाव पड़ता था सभी के ऊपर। निर्मल शांता दादी सन 1980 में विदेश यात्रा में गए थे और उस दौरान लंदन भी गए और वहाँ फिर पैलेस भी देखने गए, रानी एलिजाबेथ का महल देखने गए। वैसे तो वहाँ पब्लिक को जाने नहीं देते हैं, लेकिन लंदन के अपने भाई बहनों ने रानी के मैनेजर को बताया कि ये हमारी संस्था के संस्थापक की बेटी है। तो मैनेजर ने राजमहल के अंदर जो तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, तो वहां भी ले जा करके दिखाने लगे। तो राजमहल देखते देखते उस एक शोकेस के पास आए जिसमें तरह तरह की ज्वेलरी रखी हुई थी। उस ज्वेलरी में बाजे वाला बकल भी था जो दादी के ऊपर था, फिर रानी को दिया गया था। उसको देखते ही निर्मल शांता दादी ने मैनेजर से पूछा, इस बकल में ट्यून बजता है ना? तो उसने वो एकदम फंक हो गया मैनेजर, ये तो ब्रह्म कुमारिया है, उनको रानी की प्राइवेट चीजों के बारे में कैसे पता लगा? इस शोकेस को ताला लगाया हुआ है, फिर इस बकल में ट्यून बजता है, ये इनको कैसे पता लगा? शायद ये कोई जासूस है। उस मैनेजर ने जाकर रानी जी को कहा, तो रानी ने कहा कि अच्छा ले आओ, उससे मैं पूछती हूँ कि वे कौन है। जैसे ही सब रानी के सामने गए और दादी को देखा और दादी को पहचान लिया रानी जी ने, देखते ही दादी को गले लगाया और पूछा, बाबा कहाँ है? बाबा के बारे में दादी ने सारी बातें बताई, तो उनको बहुत बुरा लगा कि क्योंकि 1980 में बाबा तो नहीं थे ना। फिर उसने अपने सेक्रेटरी से कहा, उस बकल को तो उसके बाप ने ही बना के दिया है, इसके पहनते इन्होंने पहना था, पहन के बकल उसको देख करके हमने ये बकल खरीदा था, इसीलिए इसको मालूम है कि इसमें ट्यून बजता है। वो सेक्रेटरी को बताने लगी कि इसके बाप का स्वभाव बहुत मीठा है। फिर उसने दादी से पूछा कि तुम बचपन में मैं तो गले में, हाथ में, बालों में सभी ज्वेलरी पहनते थी, तो रंगीन कपड़े पहनती थी, अब क्या हो गया? सफेद साड़ी पहनी है, कोई ज्वेलरी भी नहीं पहनी है, ये ट्यून वाला बकल पहनेंगे? तो दादी ने बहुत प्यार से कहा, नहीं, अब तो मैं सन्यासिन हो गई हूँ, ज्वेलरी आदि नहीं पहनते। उसके बाद बहुत प्यार और इज्जत दी और ऐसे थोड़ा समय बातचीत किया और बहुत खुश होकर के आए। तो बाबा बहुत फ्राक दिल व्यक्ति थे। एक बार नेपाल के राजकुल में मालूम पड़ा कि दादा अपने घर बहू ले आए हैं, तो उसके सदस्य और शहजादियां इत्यादि विजेंद्र दादी से मिलने आ गए। जब उदयपुर के महाराजा को मालूम हुआ कि दादा कलकत्ता में बहू को लेके आए हैं, तो उन्होंने भी दादा को लिखा था कि वे सिंध जाते समय अपनी पत्नी और बहू सहित बीकानेर से होते हुए जाएं। दोनों राजाओं के राजकुल की महिलाओं ने जब विजेंद्र दादी को देखा तो वे ये देखकर हैरान रह गई कि दादी ने उनसे बहुत ज्यादा जेवर पहन रखे थे। एक एक अंगुली में दो दो अंगूठियां पहन के रखा था दादी ने, और वे भी कीमती हीरे हीरों की, हार भी हीरों का बनाया हुआ था। जब ब्रिजेंद्र दादी की शादी हुई थी बाबा के बड़े बेटे के साथ, तो बाबा ने उस जमाने के 2.5 लाख की ज्वेलरी दादी को पहनाया था। तो ऐसे बहुत ही हेवी ज्वेलरी बाबा अपनी घर की महिलाओं को पहनाते थे। और ये भी कहा जाता है जसोदा मैया को, क्योंकि हेवी ज्वेलरी कान बाली वो सब कुछ हीरों का हेवी ज्वेलरी पहनते थे, तो 3 बार वो सिलाई करना पड़ा था कान को, और नाक में भी 2 बार सर्जरी करनी पड़ी क्योंकि हेवी ज्वेलरी पहनते थे। क्योंकि बाबा का रहन सहन बहुत ऊंचे कुल के साथ होने के कारण से इस रीति से बहुत हेवी ज्वेलरी भी लोग पहनते थे। ये सब देखकर वे सब बाबा को बेताज राजा मानते थे और ये भी महसूस करते थे बाबा फारग दिल हैं। परंतु जैसे जैसे बाबा अधिकाधिक अंतर्मुखी होते गए, उनका मन इन चीजों से हटता गया और उन्हें ये श्रृंगार फीके दिखाई देने लगे और आखिर सुनहरी शब्दों में लिखी जाने वाली इतिहास की एक घड़ी आई जब शिव बाबा ने फारक दिल और राज कुलोचित संस्कार वाले साधारण और साथ साथ उच्च जीवन प्रणाली वाले दादा के रथ में शिव बाबा का अवतरण हुआ, दादा को अपना माध्यम बनाया। बाबा के निकटवर्ती संबंधियों से जब हम बाबा के ऐसे जीवन वृत्तांत सुनते हैं तो उसे यह स्पष्ट विदित होता है कि शिव बाबा की प्रवेशता से पहले दादा दिनों दिन अंतर्मुखी होते जा रहे थे और कुछ गहरे स्वचिंतन में लगे जा रहे थे। एक बार बाबा के यहाँ काफी अतिथि आए हुए थे तो सभी रात्रि को सबका आतिथ्य करके बाबा फिर बाद में सब जब सो गए तो एक चाचा के कोटी के पास वहां जा करके विश्राम करने के लिए गए थे, क्योंकि तब बाबा बहुत एकांत प्रिय हो गए थे और घर में बहुत सारे लोग थे तो एकांत में बैठना था बाबा को, तो इसलिए उनके घर में चले गए। उस रात्रि को उनके चले जाने के बाद एक नौकर बाबा के लिए उस कोटी पर दूध लेकर गए। वहां पहुंच कर उसने देखा कि बाबा वहां नहीं है। वो बेचारा लौट कर आया, फिर घर वापस लौट कर आया, उसने घर समाचार दिया। तब बाबा के जो बड़े भाई है नवल राय जी, तो उन्होंने दूसरे भंडारी को बाबा को ढूंढने के लिए भेजा और एक ड्राइवर को लेकर स्वयं भी ढूंढने गए। उन्होंने देखा कि एक चर्च के निकट एक अच्छा ऊंचा सा स्थान था जहां एकांत और शांतिपूर्ण वातावरण था। बाबा उन दिनों एकांत और शांति बहुत पसंद करते थे। ऐसा वातावरण देखकर वे वही एक बेंच पर बैठकर गहरे चिंतन में मग्न हो गए थे। भाई ने पीछे से जाकर बाबा को टच किया और उठाया तो दादा ने पीछे मुड़ते हुए उनको देखकर कहा, भाऊ अभी चलता हूँ। बाबा ने ख्याल नहीं किया था कि उन्हें कोई ढूंढते हुए वहां तक आ पहुंचेंगे। उन दिनों वे मनन चिंतन में ही रहते थे। बाबा सारी सारी रात तपस्या में बैठे रहते थे। विशेष तौर पर चांदनी रात को वे काफी देर तक प्रभु चिंतन करते रहते थे। देखा जाए तो साकार बाबा अपनी भक्ति काल में ही भगीरथ पुरुषार्थ में लग गए थे। तभी तो वे शिव बाबा के भाग्यशाली रथ बने और ज्ञान गंगा तो उतारने के निमित्त बने। कुछ वर्ष पूर्व बाबा के अपने ही हाथों से लिखी जो नोटबुक है, जो डायरी है, उसे ये स्पष्ट विदित होता था कि शिव बाबा की प्रवेशता से पहले उनकी मानसिक भूमिका कैसी थी। उस पर कुछ इस प्रकार लिखा हुआ था, हे मन मंत्री, आज मैंने तुमसे बात करनी है। जब मैं आत्मा राजा हूं तब तुम मुझ आत्मा को आत्मा की आज्ञाकारी क्यों नहीं बनते हो? आप कहते हो कि जिनके बंधन कट जाते हैं उन्हों को सहज होता है, क्योंकि औरों से मोह निकाल कर एक ईश्वर में ही रखना है। क्योंकि बंधन टूट जाते हैं तो फिर मोह का ख्याल उस तरफ नहीं दौड़ता। ये सब बाबा की डायरी में लिखा हुआ है। बाकी व्यवहार भी छोड़ देना है, कुटुंब से मोह टूटा तो बंधन खलास, फिर तो सहज होता है, या कुछ ना हो तो कुछ नहीं हो तो ये पेट पूजा तो सहज मिल जाता है। तो ईश्वर जरूर पहुंचाता है जो जरूरत है, तो परमात्मा जरूर वो दिलाता है। शरीर के साथ ये खुद जिम्मेवारी उठाते हैं, मतलब परमात्मा जिम्मेवारी उठाते हैं, बाकी पीछे फुरनों के बंधन कट गए तो बहुत ही सहज है। शांत होकर बैठना शांत रूप होने का ही है अभी। क्यों मन ऐसा, क्यों बंधन में फंसा हुआ है? तुम समझो कि बंधन तुम्हारे खलास हो गए, समझो कोई भी तुम्हारा नहीं है, सभी नारियां देवियां हैं, सभी नर देव हैं, सब एक है। या सोचो मैं तो मर गया हूं, यानी ये देह है ही नहीं, ये निश्चय कर लो तो तुम्हारा कुछ नहीं है, इस संसार में कुछ नहीं है, मैं हूं ही नहीं, मैं मर गया, बाकी हे नाथ तू ही तू है, हे भगवान तू ही तू है, मेरा कुछ नहीं। भाई पक्का कर लो कि ना कोई तुम्हारा ना तू किसका, मेरा कुछ नहीं सब तेरा, जो आज मेरा है वो सब हो गया तेरा। तो ऐसा पुरुषार्थ दादा लेखराज का बाबा केशव बाबा के अवतरण से पहले ही ऐसा बहुत ज्यादा पुरुषार्थ होता था। इस प्रकार अंतर्मुखी होकर अपने को सुधारने और सवारने की प्रबल चेष्टा उनमें स्पष्ट दिखाई पड़ती थी। तो कौन सी एकदम सुख सुविधा से भरपूर, एकदम वैराग्य जब आया, फिर सब कुछ छोड़ छाड़ करके बाबा के यज्ञ में सब कुछ बाबा ने स्वाहा कर लिया। तो बाबा जैसे हमें भी त्यागी तपस्वी बनने की जरूरत है। कई बार मैं सोचती हूँ बाबा ने या दादियों ने जिस जितना लेवल में उन्होंने त्याग किया है, हमारा त्याग कुछ भी नहीं। बाबा के बहू या फिर जसोदा माता के हाथों में इतने हीरों के अंगूठी होती थी, इतने जेवर था, लेकिन बाद में जब मधुबन आए, यहाँ पांडव भवन आए, तो वो झाड़ू पोछा भी करते थे, साफ सफाई भी करते थे, साधारण सूती के कपड़े पहनते थे। तो उनके त्याग के सामने और कोई त्याग है ही नहीं। बाबा से और दादियों के त्याग तपस्या से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इन्हीं प्रेरणाओं के साथ सभी को गुड नाइट, ओम शांति, फिर से कल मिलेंगे।
तीर्थ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा मधुबन।